ओम शांति। बाबा के मिलन से सभी खुश हैं, बहुत खुश या थोड़े, या संकल्प चला के बाबा जोर से क्यों बोलने लगा था? संकल्प तो चला है, लेकिन चुपचाप रहते हैं सभी बाबा के बच्चे। सम्मान है ना बाबा के लिए। बाबा जब अव्यक्त हुए और बाबा व्यक्त आवाज में बोलते थे, तो दादियां, एक दिन दादियों ने बाबा से पूछा, आप जोर से नहीं बोल सकते क्या? क्योंकि तब माइक नहीं होते थे। आप हैरान होंगे, इस माइक्रोफोन की भी कहानी है। थे नहीं यज्ञ में, बाबा के सामने वो बड़ा रखते थे, मोटा सा, साइड में स्टैंड नहीं थे, न होते थे उन दिनों। तो दादियों ने पूछा कि बाबा वैसे ही नहीं बोल सकते क्या जैसे साकार में बोलते थे? तो बाबा ने कहा बोल सकते हैं, परंतु क्योंकि वतन से आते हैं इसलिए आवाज धीमी हो जाती है। जैसे हम सब भी यदि बहुत योग में बैठे हों सवेरे से शाम तक 8 घंटे, तो जब बोलेंगे तो कैसा होगा? होगा ना, आवाज में आने को मन नहीं करेगा। शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते थे तो डायरेक्ट आते थे, ध्यान में नहीं जाते थे। ब्रह्मा बाबा डायरेक्ट, बाबा आकर बैठे, शिव बाबा आ गए, आवाज ब्रह्मा बाबा की रहती थी, जैसे आपने सुना है। कल भी दादी को बाबा ने ध्यान में नहीं लिया और डायरेक्ट आ गए, इसलिए आवाज फुल थी। समझ गए ना, ध्यान में जाएंगे तो आवाज सूक्ष्म होगी। बस इतना ही रहस्य था, पता ही नहीं चला बहुतों को बाबा आ गए क्या। पर सच तो ये है कि गुलजार दादी के बैठते ही आधे मिनट में ही बाबा आ गए थे। वो हमने तो चेहरे से समझ लिया था, बाबा की दृष्टि जो घूमने लगी थी उससे। दादी ऐसी दृष्टि नहीं घुमाती है। तो क्यों बाबा डायरेक्ट आ गए, ये भी कईयों के क्वेश्चन उठते हैं। मैं ऊपर आया, मैं देर से यार, मुझे यहाँ आना था, तो फटाफट विदेशी आ गए। बाबा कल जोर से क्यों बोला? मैं क्या पता नहीं क्या परेशानी हो गई, जब धीरे बोलता था तब ये कहते थे धीरे क्यों बोलता है, और जोर से बोला तो जोर से क्यों बोलता। अरे भाई वो मालिक है, जैसे चाहे बोले। हाँ वही, उसी का उत्तर दे रहा हूँ। वो तो माइक फुल खोला हुआ था ना, देखो माइक वाले ने वॉल्यूम उतना ही खोला जितना अव्यक्त आवाज में खोलता है, तो जरा ज्यादा लगने लगी सुनने वालों को। तो बाबा डायरेक्ट आ गए, दादी को ध्यान में नहीं लिया, क्योंकि ध्यान में जाने से ब्रेन वीक होते हैं। तो दादी बहुत बुजुर्ग है और कई कारणों से उनका ब्रेन पहले ही वीक है, इसलिए बाबा अब मुझे लगता आगे का रोल ऐसा ही चलेगा। आगे आ जाओ, एक लाइन बना लो तो शुरू करें। आ रही हैं बहनें और लेट वाले अभी आएंगे, बैठो। दूसरी भी एक बात कह दूं आप सबको, हम उस समय से गुजर रहे हैं जिसमें सभी के निश्चय की भी परीक्षा हो रही है। जिनको इन रहस्यों का पता नहीं चलता उन्हें डाउट भी होते हैं, विशेषकर उनको होते हैं जो ज्यादा बुद्धिमान हैं, जो ज्यादा सोचते हैं, हर बात में सोचते हैं ये क्यों हो रहा है। अगर नीलू बहन ऊपर चली गई तो क्यों गई ये, अगर शशि बहन ने अनाउंस कर दिया तो बाबा को क्यों रोका, इन सबको क्या हो गया है, ये सब प्रश्न हमारे पास आते हैं, इसलिए जरा खोल के बता रहा हूँ। नीलू बहन इसलिए गई होगी, मुझे पता नहीं वो क्यों गई थी, पर क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि बाबा आ गए या दादी ध्यान में जाएगी, इसलिए उसको पूछना था कि बाबा आप आ गए, लगता तो जरा खराब है, माइक रख दें, यस हो गया, ठीक है, नेचुरल है ना। हम सबको भी लग रहा था कि दादी अभी ध्यान में जाएगी या, पर हमने दृष्टि से चेहरे से समझ लिया था, तो इसमें कुछ संशय की बात नहीं होनी चाहिए। किसी को भी होती है तो वो जरा अपने निश्चय में फिर से स्थिर हो जाए, बाबा मालिक है। और मैंने पहले भी यहाँ तो क्लासेज में सब यहाँ वाले तो जानते हैं, हमने ये सब बातें स्पष्ट की थी, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। आज बाबा की मुरली में ड्रामा की बात याद है, याद है ना? बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। बाबा ने साकार में कह दिया था, मैं तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देकर शांत हो जाता हूँ। इसलिए उसे ज्ञान नहीं देना है, उसने अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, अब वो शांत हो रहा है। और अभी संगम युग पर तीसरा रोल चलेगा, भाई कोई इशारा करके इधर भेजते रहो, टाइट न बैठो। अब संगम युग का तीसरा पार्ट प्रारंभ होगा। साकार चला, लंबा समय अव्यक्त चला, अब है तीसरा पार्ट। कौन सा होगा वो? कई लोग सोच रहे बाबा नहीं आएगा, क्या होगा, शायद इससे भी अच्छा हो। पता आपको इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि महान आत्मा, इधर आ जाओ, चलो मैं ही कह देता हूं, इधर आ जाओ। महान आत्माएं जिन्होंने गहन तपस्या की है, सुन लो ध्यान से, जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया है, जो साक्षात्कार मूर्त बन गए होंगे, वो स्टेज पर आ जाएंगे और उनके द्वारा सभी आत्माओं की पालना होगी। इसलिए खेल चलेगा जय जयकार का। ज्ञान संपूर्ण हो चुका है, बाबा को कुछ और सुनाने की जरूरत नहीं है। जिनका ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ है, वो अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करें। गुह्य से गुह्य रहस्य बाबा ने खोले हुए हैं, कुछ भी जानना शेष नहीं है, चाहे वो योग के बारे में हो, संपूर्ण बनने के बारे में हो, संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण सत्यता, स्वमान, मन की सारी शक्तियों के रहस्य, सर्व शक्तियां, सृष्टि का खेल कैसे चलता है। देखो कितनी गहरी बात बाबा ने एक लाइन में कह दी है, सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। सृष्टि की स्थिति समझिए, इसमें सुख है या दुख है, इसमें शांति है या अशांति है, ये सतो प्रधान है या रजो प्रधान है, इसमें क्या क्या हो रहा है, उसका आधार हमारी स्थिति। ये न वेदों में कहीं लिखा गया, न दर्शनों में, न उपनिषदों में, ये गुह्य रहस्य बाबा ने सब खोल कर रखे हुए हैं। इसलिए ज्ञान परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट, अब हमें कंप्लीट होना है। इसलिए बाबा अपने पार्ट को अब लोप करने की ओर है। जैसे साकार में जब बाबा व्यक्त हुए तो बाबा से पूछते थे, बाबा हमें छोड़ के क्यों चले गए, आपने तो वायदा किया था साथ लेकर चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, क्या हो गया? तो बाबा कहते थे, अभी गए नहीं है, बीच में है, कमरा बदला है, लेकिन सितारों को चमकाने के लिए ज्ञान सूर्य लोप हुआ है। जब तक ज्ञान सूर्य चमकता रहेगा, सितारे नहीं चमकेंगे, सीधा है ना? सूरज आसमान में हो, तारे नहीं चमक सकते, उसको अस्त होना होगा, छुपना होगा, तो तारे चमक उठते, तारे हैं, चमकते नहीं हैं। ऐसे ही अब जमान आत्माएं अश्रतन और 100 वो ऊपर आएंगे धीरे धीरे, और उनके द्वारा संसार की पालना होगी, बाबा की जय जयकार होगी, बाबा की सेवाएं बहुत बढ़ जाएंगी, लाखों लाखों लोग आएंगे, रोज रोज 20-30-50 हजार की संख्या बढ़ेगी ब्राह्मणों की, रोज रोज वो खेल चलने वाला है। किसी ने आज मेरे से प्रश्न पूछा, एक युवक बड़ा कंफ्यूज था कि मुझे एक बात पूछनी है आपसे। मैंने कहा क्या? वो आज की क्लास के लिए नहीं है, जस्ट इशारे में के कईयों ने कह दिया है कि अश्रतन पर तक्ष हो गए, अश्रतन मतलब पूरे हो गए, तो आप क्या कहेंगे? किसी बड़े ने कह दिया है। मैंने कहा हम तब तक कोई बात नहीं कहते जब तक भगवान न कहे, ठीक है बात या नहीं? दूसरी बात, बाबा ने मुरलियों में कह दिया था हसरतों का नाम बाबा बोर्ड पे नहीं लिखेगा, ध्यान में नहीं दिखाएगा, किसी के द्वारा नहीं बताया जाएगा। ये रतन अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर अपनी अलग अलग महानताओं के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, इसलिए किसी को बताना नहीं पड़ेगा ये असरतन है। सारा संसार उनको कहेगा ये असरतन है, इसलिए अनाउंस होने की बात नहीं। बाबा की मुरलियों में सबने सुन लिया है, मामा बाबा के अलावा किसी का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए सबको क्लियर रहे। चलें कल की मुरली पर, चार मुख्य बातों पर आपका ध्यान खिंचाना है। मैं रिपीट भी कराना चाहता हूं पर टाइम आगे बढ़ रहा है। हमारे दिल में क्या है और बाबा के दिल में, लगा तो सबको होगा मोटी सी बात, क्या बाबा बार बार कह रहा है, पर मैं पूछता हूं आपको, हमारे दिल में क्या है, सोच के उत्तर देना, बोलो। सोच के मैंने कहा, बाबा तो हमें खुश करने के लिए कह देता है, बच्चे कहेंगे हमारे दिल में बाबा है, तब तो था ना, उस टाइम तो था, बाबा कोई गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन पूछो अपने से हमारे दिल में क्या है। दिल माना बुद्धि, ये दिल नहीं इधर वाला, इधर वाली, हमारी बुद्धि में क्या है। दिल इसलिए कहा जाता है, दिल का नाता प्यार से होता है, प्यार दिल से जुड़ा है, हमारे मन में बुद्धि में दिल में संपूर्ण प्यार किसके लिए है। बाबा की बुद्धि में तो, बाबा के अंदर तो बच्चों बच्चे हैं ही, उसमें तो कोई शक नहीं, वो तो अपने सभी बच्चों को अपनी शीतल छाया में रखे हुए हैं, नैनों में हैं उसके। कौन है नैनों में, कौन, जो याद में रहते हैं, जो उसके बहुत स्वीट और प्रेम में मगन, कल की मुरली से हटके भी बोल सकते हैं आप, जो बहुत पवित्र हैं वो बाबा के दिल में हैं, जो निष्काम सेवा करते हैं वो उसके दिल में हैं, उसकी दृष्टि उन पर सदा रहती है, जिनकी दृष्टि उस पर रहती है, ठीक है या नहीं। अगर हमारी दृष्टि इधर उधर भटकती है तो क्या बाबा की दृष्टि हम पे रहेगी, बाबा की दृष्टि उन पर ही रहती है जिनकी दृष्टि संसार में और कहीं नहीं, केवल उस पर है। तो हमें अपने से पूछना है, इसको ऐसे ही नहीं लेना, कई लोग सोच रहे थे बाबा बार बार बोल रहा है, क्या बात है, और कुछ नहीं रहा क्या बाबा के पास, हमारे पास तो बैठे रहते ना शांतिवन वाले, वो जरा बोलने में खुले होते हैं ना, वो समय से साथ रहे हैं, बाबा का ज्ञान खत्म हो गया क्या। इसमें एक रहस्य आपको जानना चाहिए, मान लो आप हारमोनियम बहुत अच्छी बजाना जानते हैं लेकिन हारमोनियम खराब है, बजाएंगे उसमें ठस ठस होती है, ठस आप दबाते हैं ठस हवा निकल जाती है, बजेगा अच्छा। दादी का ब्रेन काफी वीक हो चुका है क्योंकि लंबे समय उसने भगवान को अपना रथ दिया है, इसलिए थोड़ा सा वो रिपीट, दादी भी जब बोलती है ना रिपीट करने लगती है तो वो रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए इसमें भी किसी को संशय नहीं लाना है। 80 साल हो गए दादी को ध्यान में जाते हुए, 80 साल में कम से कम 10,000 बार तो गई होगी, ध्यान में जाने से ब्रेन कमजोर हो जाता है थोड़ा, इसलिए बाबा मुझे याद है साकार में थे, बहुत मना करते थे कईयों को ध्यान में ज्यादा नहीं जाओ, संकल्प ही छोड़ दो, और ये देखा गया जो बहुत ध्यान में गए किसी किसी के अंदर भटकती आत्माओं का प्रवेश हो गया, बहुत कमजोर ब्रेन हो गया, बाबा मना करते थे, लोग सोचते थे बाबा पता नहीं मना क्यों करते हैं इतनी अच्छी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए भगवान मना नहीं करता है, ज्ञान छोड़ के भी गए हैं। इसलिए सबसे अच्छी चीज है योग अभ्यास। इसे मन भी पावरफुल, बुद्धि भी पावरफुल। तो इसलिए बाबा बार बार कह रहे थे, अब हमें चेक करना है हमारे दिल में कौन है। संपूर्ण ज्ञान भी हमारी बुद्धि में होना चाहिए और अपनी बुद्धि में बाबा को बैठाने का स्थान भी होना चाहिए। हंसी में मैं कह देता हूँ, कईयों ने तो अपनी बुद्धि को इतना बढ़ लिया है कि भगवान के लिए भी जगह नहीं छोड़ी। समझ गए किस में बढ़ लिया? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे, पर चिंतन में। किस में बढ़ लिया? व्यर्थ में। और किस में बढ़ लिया? आसक्तियों में, मोह ममता में, किसी ने अहंकार में, किसी ने बाहर की चीजों में, बहुत सारी चीजें। मुझे बाबा का हमने एक संदेश सुना था ज्ञान सरोवर में, तब से मेरी बुद्धि इन चीजों से बिल्कुल, पहले भी नहीं थी, बाकी जो मैं थोड़ा बहुत सोचता था तो भी हट गई। बाबा ने कहा, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बिजी हो गए हैं। मुझे समझ में आ गया कि जो भगवान को प्रिय नहीं है वो हमें भी प्रिय नहीं होना चाहिए। मुझे तो वैसे भी रुचि नहीं थी, पर उस दिन से बाकी भी खत्म हो गए। हमने चेक करना है अपने को, हमारी बुद्धि में बाबा रहे, हमारे दिल में बाबा को स्थान मिले, दिल बहुत पवित्र हो। मुझे एक कहानी याद आ गई, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। पार्वती ने जिद की महादेव जी से कि सबको तो आपने महल दे दिए, हमें झोपड़ी, हमें भी सोने का महल बनवा के दो। माताएं कहती है ना, भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि हम तपस्वी हैं, हमारे भाग में झोंपड़ी ठीक है, महल छोड़ दो। पार्वती ने जिद की तो चल भाई, कुबेर को कह दिया, रावण को बुला दिया। रावण बहुत बड़ा शिल्पी था उस समय का, कि भाई रावण आएगा, इसको जो पैसा मांगे दे देना। बन गई सोने की लंका। अब मुहूर्त कराना था, सोचा घर में ही है ब्राह्मण पंडित, इसी से करा लो। ब्राह्मण रावण जो था शिव का बहुत जबरदस्त भक्त था, उन्होंने सोचा शिव यहाँ रहेंगे, उनका महल है, मैं यही महल मांग लेता हूँ, मैं भी यही रहूंगा, सदा साथ रहने को मिलेगा। जब दक्षिणा मांगने को कहें तो यही मांग लूंगा। गृह प्रवेश की सब अनुष्ठान हो गया और शिव ने कहा, भाई पंडित जी बोलो दक्षिणा क्या चाहिए। उसने आंखें बंद की, ध्यान शिव का लगाया और कहा, ये महल ही मुझे दे दो, आप भी यहाँ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूंगा, दोनों का साथ मुझे यही चाहिए। तो पता शिव ने क्या कहा था, जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है, ये महल तुम्हारा, हम चले कैलाश पर्वत पर। पार्वती और का पार्वती, अपनी झोंपड़ी ठीक है, समझ गए, जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं। इसलिए जिसको बाबा को बैठाना है अपने दिल में, वो मैं और मेरे से पूरी तरह मुक्त हो जाए। सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ ये है, जिनको अध्यात्म के इस मार्ग पर आगे निकलना है, जिन्हें बाबा का नाम रोशन करना हो, जिन्हें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना हो, वो सूक्ष्म पुरुषार्थ करें मैं और मेरेपन पर विजय। मैं की जड़ें भी बड़ी गहरी हैं और मेरापन तो और भी सूक्ष्म है। मेरापन ममत्व पैदा करता है। कुछ भी चीज आज ही हमें मिली हो, मेरी ममत्व प्रारंभ, कल तक वो दूसरे की थी, ममत्व नहीं था। छोटी चीजें, मेरा सूक्ष्म है बिल्कुल, बात केवल मेरे बच्चों की नहीं, बहुत मेरे हैं। बाबा कभी कहा था मुरली में, देह के संबंधियों से ममत्व मेरापन निकालना तो सहज है, परंतु वस्तुओं से ममत्व निकालना बहुत कठिन हो रहा है। कईयों का ममत्व सोने हीरों से निकल जाता है, लेकिन बाबा ने कहा था मिट्टी की ठिकरी से रह जाता है, छोटी छोटी चीजों से। मुरली में तो सबने सुना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या था उसमें खटिया अलमारी मधुवन सब कुछ, खटिया अलमारी भी और हो सकता है सभी को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा, जो पहना हुआ है, जो कुछ है इधर बस वही है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। धन संपदा बैंक में है, परिवार घरों में है, हम अकेले हैं, बस यही है जो है और कुछ नहीं। तब क्या होगा? हमारी सच्ची धन संपदा कौन होगा? बाबा और हमारी स्थिति, हमारे पुण्य कर्म। ये बात सभी को ख्याल रखनी है कि अंत में एक बार सभी अकेले होंगे, घर जाने से पहले सभी एक बार अकेले, और अपने को देखने का मौका मिलेगा हम कहाँ हैं, क्या किया है हमने भगवान को पाकर, क्या पाया है उससे। 20-20 साल के भी आकर यही पूछ रहे हैं, योग कैसे लगाएं भाई जी, आज ही आए होंगे कई, योग कैसे लगाएं, 20 साल में नहीं सीखा योग कैसे लगाएं, नहीं सीखा, सिखाया तो बहुत गया है, चलो टीचर नहीं सिखा सकती आपकी, अव्यक्त बाबा ने बहुत सिखाया है, लेकिन क्यों नहीं सीख पाए, बोलो सीधा सा उत्तर है। नहीं, मैं व्यर्थ की बात भी नहीं कहता, नहीं तो सब जरा भारी हो जाते हैं। अभ्यास नहीं किए, समय नहीं लिया अपने लिए, बस थोड़े से उठे बाबा बाबा किया, फिर ये समस्याएं परेशानियां और इन सब में चले गए। मुझे एक सीन याद आ गया, एक जगह विदेश में एक माता आई मेरे पास, चेहरा उसका सिर साफ दिख रहा था, बहुत परेशान है वो। मैंने पूछा क्या बात है, बहुत दुखी रहती हो, परेशान हो? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा एक प्रश्न सीधा पूछता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं कि नहीं, बुरा नहीं मानना है, मैं हलचल मांगने आई हूँ, इसलिए साफ साफ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा तुमने लगता है बहुतों को सताया है, और उसने क्या कहा, बिल्कुल ठीक, मैंने सचमुच बहुतों को सताया है। मैंने कहा तो तुम महान बन सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है इस चीज का, बहुत लोग दूसरों को दुख देने वाले ये नहीं जानते कि उन्होंने दूसरों को दुख दिया, वो कहते हैं सबने मुझे दुख दिया है। प्राय जो दूसरों को दुख देते हैं वो ये सोचते हैं सब मुझे दुखी कर रहे हैं, पर इसको मैंने जब पूछा तो उसने साफ कहा मैंने बहुतों को सताया है। मैंने कहा तो तुमने रियलाइज किया ना, अब तुम्हारा मार्क क्लियर है, फिर आगे बात हुई। तो देखिए, जिसने दूसरों को बहुत सताया है वो परेशान है आजकल, बहुत परेशान है। कितने लोग आ गए होंगे मेरे पास शांतिवन में 4 दिन में, दुखी माताएं रोती रही। मैं थोड़ा लेट हो गया, 15 मिनट किसने बताया रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, वो उसका चेहरा ही बता रहा था योग लगता है बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ मार्ग निकालना पड़ता है ना। मैं आपको एक कहानी और सुना देता हूँ, सच्ची कहानियां सच्ची हैं। एक माता कहीं की मेरे पास 15 साल से आती है, ये समस्या वो समस्या, पति ने तंग किया इसने उसने। मैं उसको पुरुषार्थ सिखाता आता हूँ, बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत अच्छी सेवादारी भी है, पुरुषार्थ उससे होता नहीं। जब भी आती है साल में 2-3 बार वही बात लेकर आती है, बाबा से पहले दिन भी आ गई वही। मैंने कहा तुम कुछ बताओ नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या बताना चाहते हो, बहुत दुखी हो ना? बहुत दुखी हूँ, पति ये करता है, बच्चे ये करते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई किसी को दुखी नहीं करता। मैंने उसे स्ट्रिक्टली कहा मैंने तुम्हें इतनी बातें सिखाई करने को, तुम करती नहीं हो इसलिए दुखी हो। कहा तो क्या करूं मैंने कहा कल बाबा आ रहे हैं, 1000 बार अभ्यास करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और अगले दिन सवेरे मेरे पास आके बताना। आज सवेरे आ गई, मैं तो भूल गया था, मैं सोचा फिर वही समस्या सुनाने आए होंगे। मैंने कहा माता जी आप पीछे सुनाना, पहले इनकी सुन लूं। कहा नहीं नहीं सुनाना नहीं है, कल मैंने किया, 1000 बार तो नहीं हुआ पर 500 बार हुआ होगा, और कल मुझे बहुत सुख मिला। मैंने कहा तुम्हारे मुख में गुलाब गुलाब जामुन और भी कुछ हो तो खा लो। पहली बार जिंदगी में उसके मुख से निकला कि मुझे कल बहुत सुख मिला, नहीं तो हर बार बाबा से मिल के आए कोई अनुभव नहीं हुआ। भाई जी हम तो देखते रहे, बाबा आया हुआ है, ठीक है आया हुआ है, आया है तो क्या हुआ, आया है ऐसे भी तो बहुत है ना, भगवान आया है ये पता है, आया है ठीक है बैठा है सबसे मिल रहा है। क्यों सुनाई मैंने कहानी? किसी से कुछ भी न हो रहा हो, ऐसे बहुत आत्माएं हैं आजकल, समस्याओं में इतनी उलझ गई हैं, परेशानियों में इतनी त्रस्त हैं, कुछ भी नहीं होता। मेरा बाबा, उन्हें लगता है तो क्या है इसमें, मेरा बाबा इसमें क्या है, सूखा लगता है शब्द। उनको चाहिए 2-4 स्वमान अपने चुन लें और एक दिन में 1000 बार याद कर लें, मंत्र बना लें, चित शांत हो जाएगा। 7 दिन ही कर लो, फिर योग लगने लगेगा, फिर योग लगाओ, तब जीवन आनंदित होगा। सदा ही शिकायत करते रहना, मैं बहुत परेशान हूं, फलाना ये करता है, माँ ये करती है, सास ये करती है, बच्चे ये करते हैं, इससे तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ करना ही होगा। क्योंकि सबको ये मालूम है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। बच्चे बहुत शराब पी रहे हैं, पति शराब पी रहा है, आजकल की कॉमन समस्या, कॉमन हो गया है बहुत। मैं यूके में था, वहां तो अगर 10 दुकानें हैं उनमें से 3 शराब की हैं, वहां तो ऐसा बुरा हाल है। भारत में तो फिर भी थोड़ा सा कम है, अभी लोग कम से कम डरते भी हैं कि सब कोई देख न ले हम पी रहे हैं, पर जब पी लेते हैं तब तो सबको दिखता है, चाल बदल जाती है। मैं कहा यहाँ पीने वालों की फट से चाल बदल जाती है और भगवान के बच्चों की 50 साल में चाल नहीं बदली, बदल जानी चाहिए ना चाल, लोगों को दिखाई दे, दिखाई देता ना पी के आए हैं, इधर भी पता चले भगवान से मिल के आए हैं, होना चाहिए या नहीं, कुमार क्या कहेंगे, चाहिए ना। तो सभी बाबा को अपने दिल में बसाएंगे, और बाबा की बहुत अच्छी लहर थी, बाबा को स्लोगन दिखा दिया तो बाबा ने उस पे कुछ बोला, नया युग अपना युग, पराया युग से अपना युग में जा रहे हैं, अब उस युग को हमें लाना है। आप कभी सोचते अवश्य होंगे, जब बाबा मुरलियों में कहता ही रहता है तुम अपने तन मन धन से श्रीमत पर योग बल से अपना स्वराज्य स्थापित कर रहे हो, ये लाइन बहुत ही गहरी है, छोटी नहीं है, राज्य स्थापित कर रहे हो। राज्य की स्थापना में मेहनत पड़ती है, राज्य की स्थापना में गाली सहनी पड़ती है, राज्य की स्थापना में जिसका राज है उससे मृत्यु का डर रहता है, उसको पता चल गया तो मौत। राज्य की स्थापना में अनेक तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, हमें तो बाबा ने कष्ट नहीं दिए, लेकिन हम राज्य स्थापित कर रहे हैं। सोचो एक राजा है, उसे अपना राज्य स्थापित करना है, उसे अपनी प्रजा तैयार करनी पड़ेगी, उसे प्रजा की पालना करनी पड़ेगी, उसे स्वयं को राजा बनाना पड़ेगा। मान लो प्रजा बहुत बना दी और स्वयं राजा न बने तो प्रजा किसी और के पास चली जाएगी, ये बाबा ने सब बताया हुआ है। कि जैसे यहाँ इलेक्शन होते हैं, चुनाव, भाई जिसकी ज्यादा वोट हो गई वो चुन लिया गया। बाबा ने भी कहा था, मान लो तुमने बहुत सेवा की और तुम्हारी 10,000 प्रजा तैयार हो गई, लेकिन उन प्रजा के मन में कोई और है, वो किसी और को अपना राजा मानते हैं, उनका प्यार किसी और से, आपसे नहीं, तो वो सारी प्रजा उसकी तरफ चली जाएगी। तो हमें राज्य स्थापित करने में स्वयं को राजा भी बनाना है और प्रजा की पालना भी करनी है। केवल हमने संदेश दे दिया, हमने कोर्स करा दिया और कोई मान ले कि ये हमारी प्रजा बन गई, बिल्कुल नहीं। हमने उनकी पालना कितनी की है। बाबा ने अंतिम पेपर के लिए 3 बहुत सुंदर बातें बताई हैं, सभी अच्छे पुरुषार्थी उन पे काम करेंगे। अंतिम अंत में मार्क्स 3 बातों के आधार पे मिलेंगे। कितनों को योग्य बनाया, कितनों को संदेश दिया ये नहीं, कितनों को योग्य बनाया, स्वयं कितने शक्तिशाली बन कर रहे। पूरा जीवन माया से युद्ध है ना, माया से युद्ध में शक्तिशाली बन के रहना होता है। और तीसरा, जीवन कितना निर्विघ्न रहा। ये 3 बातें हैं, क्योंकि विघ्न मनुष्य के पास आते हैं उसके क्रोध से, उसके अहंकार से। विघ्नों के 2 मूल कारण हैं। स्वार्थ विघ्नों को जन्म देता है, गलत स्वभाव संस्कार विघ्नों के कारण बनते हैं। जिनका सरल स्वभाव है, जो बहुत नम्रचित्त हैं, जो स्वीट एंड सॉफ्ट हैं, उनके आगे विघ्न ठहरते ही नहीं। न वो किसी के आगे विघ्न पैदा करेंगे, न विघ्न उनके सामने ठहरेंगे। तो हम अपने राज का आह्वान कर रहे हैं, तो हम शुरू करें अपने देव स्वरूप का आह्वान करें, अपने अंदर सत्वप्रधानता का आह्वान करें, अपने को स्वराज अधिकारी बनाएं, अपने देव स्वरूप को सामने देखा करें। देव स्वरूप आता है सामने माताओं को, देव स्वरूप पहला जन्म। सब अपने से पूछो, देख कर देखो, अभी आएगा सामने पहला जन्म। जितना स्पष्ट सामने आएगा उसको कहेंगे आह्वान होना। हमें क्लियर फीलिंग हो, ये मैं हूं। पहले वो स्वरूप सामने आएगा, फिर ये फीलिंग होती जाएगी, ये मैं हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा को था ना बहुत क्लियर, वो बातें सबसे भूलती जाती हैं, हमें भूलनी नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भविष्य का नशा बहुत जबरदस्त था। सामने खड़ा रहता था वो स्वरूप, मैं ये हूं। उससे सारा पुरुषार्थ सरल हो गया था। जब इतना महान बनना है तो योग तपस्या भी उतनी ज्यादा। थारा मुरली में भी लक्ष्मी नारायण पास भी डोनर हुए, जरूर इन्होंने सबसे ज्यादा योग लगाया है। साकार मुरली में था ना कुछ दिन पहले। तो ब्रह्मा बाबा को ये रहता था ना, इतना बड़ा पद मिलने जा रहा है तो सर्वश्रेष्ठ योग करना है। वो ये भी तो सोच सकते थे ना, मेरा भविष्य पद निश्चित है, योग करूं या ना करूं। सोच के देखो जरा, पॉसिबल तो है ना भाई, मुझे ये बनना है। भगवान ने गारंटी दे दिया, निश्चित है ड्रामा में। लेकिन जिसका महान पद है वो योग किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, उनको सुख ही नहीं मिलेगा। वो सोचेंगे सवेरे सोए रहूं, नींद आएगी नहीं, बिस्तर कितना भी सुंदर हो आएगी नहीं नींद। तो हमारा भविष्य हमसे वर्तमान पुरुषार्थ भी कराएगा। इसको बाबा कहते हैं, ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराएगा अवश्य। तो अपने भविष्य स्वरूप का आह्वान करना माना, उसको सामने देखना और ये मैं हूं, ये गुड फीलिंग स्वयं को देना। सतयुग का आह्वान माना, सतयुग के सीन हमारे सामने आने लगे, ये है हमारी दुनिया। देखो अभी, ये है हमारी दुनिया, भरपूर सोने हीरे मोतियों से भरपूर संसार, अथाह धन संपदा। कल परसों था ना, कोई करोड़पति कोई ये, तुम्हें तो बाबा का टाइटल है पद्मा पदम पति। पदम बहुत बड़ी संख्या है, खरब से भी और बहुत ज्यादा। कुबेर हो हरेक। तो हमें तो उसकी कल्पना भी नहीं कि हमारे पास क्या क्या होगा, उसको सामने लाने की कोशिश करें सभी। अथाह धन संपदा, माताओं की साड़ियों में भी हीरे मोती जड़े होंगे, हार और श्रृंगार में तो अथाह, एक एक के शरीर पे इतने धनमाल है कि सारे मुंबई का धन एक तरफ और एक के शरीर पर एक तरफ, इतना धन संपदा होगी। अथाह सामने लाओ उसे, तो सतयुग का आह्वान होता रहेगा और इससे क्या होता रहेगा, वर्तमान ये भूलता जाएगा। ये जो वर्तमान मोह ममताएं हैं, आसक्तियां हैं, उलझे हुए हैं मनुष्य, बाबा के बच्चे भी छोटी छोटी बातों में, तेरे मेरे में अगर देखा जाए तो कुछ महान आत्माएं वहां उलझ गई हैं। अगर देखा जाए वो कितने महान और उलझे हुए वहां हैं, जिसकी कीमत एक पैसा भी नहीं है, बातों में छोटी छोटी बातें, इसने मुझे ये कहा, ये हुआ, वो हुआ, जो लक्ष्य से बहुत परे की चीज है, उल्टी चीज है, जो हमारा लक्ष्य ही नहीं है, जिसके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, ईर्ष्या द्वेष ये वो, जो बहुत छोटी चीजें हैं, ईर्ष्या द्वेष ये बहुत छोटी आत्माओं के लक्षण हैं। हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, जिन्हें विश्व का कल्याण करना हो वो किससे ईर्ष्या करेंगे, जिनका कल्याण करना है उनसे ईर्ष्या करेंगे। तो अपने को एक हायर कॉन्शियसनेस में, एक महान स्थिति में स्थित करने का समय है। तो सामने देखें अपना गोल्डन एज, जो बाबा कह रहे थे, साकार में भी ये बात बहुत कहते थे, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, रावण की दुनिया है, तुम्हारी दुनिया तो ये है। बाबा हमें उस तरफ एक आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारा लगाव उस दुनिया से हो जाए तो इस दुनिया के लगाव समाप्त हो जाएंगे, सभी निकले बाहर, भाई बहने सभी, ग्रस्त वाले बहुत बैठे हैं ना, जरा अपने को डिटैच करो, ऊपर उठाओ, कहीं भी उलझने का समय नहीं है, सुंदर समय हमारे सामने आने वाला है, बहुत सुंदर समय, और ये दिन हमें याद आया करेंगे। याद आया करेंगे या नहीं, जो मधुबन में पुराने हैं उन्होंने बाबा की कितनी पालना देखी है, कैसे बाबा ने जाग जाग कर अपने बच्चों का श्रृंगार किया, कितनी मान पालना की थी, अब वो सब खेल समाप्ति की ओर है, अब हमें सब की पालना करनी है। इसलिए कोई भी नए आने वाले कुछ संशय का प्रश्न पूछें, आपको उन्हें संतुष्ट करना आना चाहिए, और विशेष रूप से कि बाबा का जैसा भी पाठ चलेगा आगे वो समाप्ति की ओर ही होगा, ये खेल वहीं जाके समाप्त हो जाएगा कि बाबा आएंगे और केवल दृष्टि देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, तब हम समझ लेंगे कि खेल समाप्ति पर है, बाबा का पार्ट। फिर ये महान आत्माएं संसार में चमकेंगी और जय जयकार शुरू होगी, जहां तहां चारों ओर साक्षात्कार हुआ करेंगे, और वो बातें प्रत्यक्ष होंगी जो बाबा ने कही थी, जो मुरली पढ़ते हैं उन्हें ज्ञात है, संसार में आवाज उठेगी, हमारे देव आ गए, इष्ट देव आ गए, हमारे सहारे दाता आ गए, मुक्ति दाता आ गए। चारों ओर जो फरिश्तों को मानते हैं वो ये देखेंगे, फरिश्ते आ गए हमारी रक्षा करने के लिए, फरिश्ते आ गए हमें भगवान से मिलाने के लिए, फरिश्ते आ गए हमें उसका संदेश देने के लिए, ये जय जयकार के हम नजदीक होते जाते हैं, और ये इसके लिए बाबा का लोप होना अनिवार्य है, इसलिए वही ड्रामा में है, उसके लिए कोई कुछ सोचेगा नहीं, क्योंकि खेल ही इस तरह समाप्ति की ओर चलेगा ना। तो हम सभी अंतर्मुखी होकर बहुत अच्छी प्रेरणाएं बाबा से ले जाएंगे। लाल लाइट हो गई है, ये घड़ियां तो आगे पीछे टाइम दिखाती हैं। चलो अब सभी गोल्डन एज में चलेंगे, बिल्कुल मैं वहां हूं, और मेरे चारों ओर स्वर्णिम दुनिया है, प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य है, हवाओं में भी सुगंध है।
प्रभु का ध्यान।